नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानति कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय जारी है। अर्जुन के कुछ दो प्रश्न जो इस अध्याय की शुरुआत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत किए और भगवान अब उत्तर देना प्रारंभ कर चुके हैं, तो पिछला श्लोक जो हमने लिया चौथा, न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोस्ते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। और इस श्लोक का संबंध इस अध्याय के प्रथम श्लोक से, जिसमें अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा था कि यदि भगवान आपके अनुसार बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। तो अर्जुन का यह विचार चल रहा था कि मैं यदि किसी भी प्रकार का कर्म न करूं, क्योंकि युद्ध में या तो मैं हारूंगा या जीतूंगा, तो अर्जुन का यह भी प्रस्ताव हो सकता था कि मैं लड़कर हार जाऊं जानबूझकर, होता है ना, मैच फिक्सिंग में हो जाता है, जानबूझ के हार जाते हैं। तो क्या अर्जुन का यह प्रस्ताव था कि मैं लड़कर हार जाऊं? नहीं, अर्जुन बहुत ईमानदार उस दृष्टिकोण से और भगवान के सामने वो ये प्रस्ताव रखे कि मैं न तो हारूंगा न जीतूंगा, तो ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब वो युद्ध ही न करें, है कि नहीं? उसको स्पोर्ट्स में कहते हैं वॉक ओवर। तो यदि अर्जुन ये कहे कि आई विल वॉक ओवर, तो इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि अर्जुन हार गए, नहीं, वो लड़े ही नहीं, लड़ते फिर हारते तो ठीक था। तो अर्जुन का ऐसा विचार और ऐसे विचार को परखते हुए फिर भगवान ने ये श्लोक कहा, इसकी चर्चा हमने पिछले हफ्ते की, जिसमें दो महत्वपूर्ण विषय, अर्जुन का प्रस्ताव था कि कर्म का मैं आरंभ ही नहीं करूंगा नैष्कर्म में, और या फिर संन्यास ग्रहण कर लूंगा। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, संन्यास ग्रहण कर लूंगा। तो फिर लोगों को यह भी नहीं लगेगा कि अरे भाई अर्जुन किसके वजह से रिटायर हुए, है कि नहीं? तो नहीं आरंभ कर क्या आरंभ करूंगा, संन्यास। तो भगवान ने दो शब्द पिछले श्लोक में कहे, नैष्कर्म्यम और सिद्धि, ये दोनों तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाले, हरे कृष्ण। क्योंकि नैष्कर्म्यम तुम बिना कर्म किए नहीं रह सकते अर्जुन, और क्यों भगवान ने ऐसा कहा, क्योंकि अर्जुन, अब पिछले युगों में अर्जुन जैसे क्षत्रिय, उनके अंदर वो स्वाभाविक क्षत्रिय गुण रहा करते थे, आजकल ऐसा नहीं देखा जाता। हाँ, कोई किसी क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ होगा लेकिन कॉकरोच को देखकर डर जाते हैं, तो हाँ नाम होंगे कि ये शमशेर सिंह, लेकिन भगवान जानते थे कि अर्जुन जो हैं उनका स्वभाव है, क्या स्वभाव है। इसलिए तो भगवान जब शांति दूत बनकर गए तो उन्होंने दुर्योधन के सामने ये प्रस्ताव रखा कि देखो दुर्योधन, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम राज्य चाहते हो, उसी प्रकार से पांडव भी क्षत्रिय हैं, वो बिना राज्य के जी नहीं पाएंगे। क्षत्रिय का स्वभाव है कि वो राज्य करे, तो कम से कम 5 गांव दे दो उनको राज्य करने के लिए। हस्तिनापुर नहीं, हस्तिनापुर तुम्हारे लिए, तुम्हें मुबारक हो, 5 गांव दे दो, क्योंकि उनके स्वभाव के अनुसार उनको जीने दो। भगवान ने दुर्योधन को यह कहा। तो जब यहां पर अर्जुन अपने स्वभाव के विपरीत ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि मैं ये कर्म ही आरंभ नहीं करूंगा या संन्यास ले लूंगा, एक भिक्षुक का जीवन जीऊंगा। सन्यासी का जीवन क्या है? एक भिक्षुक का जीवन। तो भगवान मानो ये एक बोल रहे हैं कि रुको अर्जुन, रुको, तुम कहते हो कि तुम सन्यास लेके एक भिक्षुक का जीवन जियोगे। मैं लिख के देता हूं अर्जुन कि एक भिक्षुक की तकदीर क्या होती है। किसी घर में उसे कुछ भिक्षा मिलती है, कई घरों में दुत्कार कर भगा दिया भी जाता है, कई घरों में कुछ नहीं मिलता। तो तुम जो कि इतने माने हुए क्षत्रिय हो, विश्व विख्यात क्षत्रिय हो, तुम यदि वो भिक्षुक का कटोरा लेके जाओगे और किसी घर में यदि किसी ने कुछ देने से इनकार कर दिया तो तुम्हारे हाथ में फिर कटोरा नहीं रहेगा। क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तो इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि तुम सन्यास, एक सन्यासी के रूप में ज्यादा सुखी और सुकून को महसूस करोगे। नहीं, तुम अपने स्वभाव के विरुद्ध जा रहे। और फिर ये जो श्लोक जो पिछली दफा हमने लिया, इस श्लोक जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना रीइंफोर्समेंट, और ज्यादा फोर्टिफाई और रीइंफोर्स करने के लिए अब भगवान ये आज का श्लोक कहे हैं। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जयर्गुणैः। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जयर्गुणैः। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जयर्गुणैः। तो यहां भगवान कह रहे हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत्, अकर्मकृत कि बिना कर्म किए, अकर्म बिना कर्म किए, हे अर्जुन एक क्षण या किसी स्थान पर या जातु, जातु कहते हैं किसी समय, न तो किसी स्थान, न तो कोई ऐसा स्थान है, न कोई ऐसा समय है कि जहां पर कोई बिना कर्म किए रह सकता है। कार्यते यवशः कर्म, वशीभूत होकर हर एक जीव किसी न किसी प्रकार के कार्य में हर क्षण में लगा हुआ है। क्यों? अर्जुन पूछे क्यों? क्योंकि सर्व प्रकृतिर जयर्गुणैः, क्योंकि सारे जीव इस भौतिक संसार में ये 3 गुणों, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों के अधीन है, ये कारण है। तो ये इसका पूरा अनुवाद है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित 3 गुणों के अनुसार विवश, वो जो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, यवश, इसका ट्रांसलेशन क्या है, विवश, विवश होकर कर्म करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। तो हमें कर्म करना पड़ता है और भगवान अपनी लीला करते हैं स्वेच्छा से जब आते हैं। तो अतः कोई भी जीव एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो यदि कोई इस सिद्धांत को हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि मैं सब प्रकार के कर्म बस बंद कर दूंगा तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, तो न रहेगा कर्म, न रहेगा कर्म का बंधन। जैसे कि कई लोग इस सिद्धांत का प्रचलन करते हैं कि हम इच्छा विहीन हो जाएं, बिकमिंग डिजायरलेस। तो प्रभुपाद ने एक ही लाइन में इसका खंडन कर दिया, द वेरी फैक्ट दैट यू आर सेइंग दैट यू वांट टू बिकम डिजायरलेस इन इटसेल्फ इज अ डिजायर। तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट प्रभुपाद के अनुसार उन्होंने इसका रेफ्यूटेशन कैसे किया, यस आई हैव अ स्ट्रांग डिजायर टू बिकम डिजायरलेस। तो ये जो तथाकथित सिद्धांत है कि निष्क्रिय हो जाना या फिर डिजायरलेस इच्छा रहित हो जाना, ये सारी चीजें, ये क्योंकि जीव का जो निज स्वरूप है उसके विरुद्ध है, इट इज टोटली आर्टिफिशियल, कृत्रिम है। तो भगवान ने पिछले श्लोक में अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम व्यक्तिगत रूप से कर्म नहीं करना चाहते, यहां तो मैं सब जीवों के विषय में बता रहा हूं, तुम तो छोड़ दो, यहां तक कि एक कीट, एक चींटी, वो भी बिना कर्म किए नहीं रह सकती। तुम तो इतने बड़े क्षत्रिय हो, एक चींटी भी, अब आपने चींटियों को देखा होगा, उनकी कम्युनिटी को तो बहुत सराहा गया है, हार्ड वर्किंग कम्युनिटी, हाँ उनके अंदर वो ऐसी कम्युनिटी होती है चींटियों की, एक वर्कर एंट होता है और फिर वो कोई क्वीन एंट होती है, जैसे बी कम्युनिटी में भी इस प्रकार से। तो कितनी मेहनत, कहाँ कहाँ कितनी मेहनत करते हैं। एक हफ्ते पहले मैंने देखा ये हमारे कमरे में एक छोटा सा कीड़ा वो मर चुका था और 5 मिनट में वो कीड़े को कुछ 10 चींटियां उठाकर अपना संडे फिश मनाने जा रही। तभी हम लोग को लगता होगा कि हमारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जहां से ट्रकलोड भर भर के यहां से वहां सामान जाता है ना, विदेशों में इतने बड़े बड़े वो ट्रेलर्स, ट्रक्स होते हैं जिसके अंदर इतने अलग अलग प्रकार के सामान ट्रांसपोर्ट होते हैं मीलों दूर। तो यहाँ पर हम लोग, फिर हमको लगता है कि हम कितने बड़े महान कर्म में लगे, चींटियों के लिए वही, हाँ जैसे हम पिछले हफ्ते चर्चा कर रहे थे कुत्ते का यूयू और मनुष्य का यूयू, हमारा सोफिस्टिकेटेड है, उनका एकदम जाहिल तरीके से होता है, तो बस फर्क उतना ही है, बाकी उसमें प्रिंसिपल में कोई फर्क नहीं। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि अर्जुन इतने बड़े क्षत्रिय तुम हो, तुम तो भूल ही जाओ कि तुम बिना कर्म किए रहोगे, यहां तक कि हर एक जीव हर समय हर एक स्थान में किसी ना किसी कर्म में लगा हुआ है। तो अब जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि कैसे मैं समझूं, तो फिर भगवान ने जो प्रकृति के 3 गुण हैं इनके विषय में कहा कि ये सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये इसका फेर है। जितने सारे जीव अलग अलग प्रकार के कर्मों में लगे हैं ये कौन कर्म करवा रहा है, तो या तो कोई सत्वगुण में स्थित है या कोई रजोगुण में स्थित है या कोई तमोगुण में स्थित है या तीनों का मिश्रण। और इनका जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उसमें आप देखो कितना बड़ा साम्राज्य हम मनुष्यों ने खड़ा कर रखा है। और मनुष्यों के अलावा बाकी जो जीव है वो भी तीन गुणों के अधीन है, उन्होंने फिर अपना अपना कितना बड़ा बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है, तो वो सब इन तीन गुणों के वशीभूत। तो श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में इसी श्लोक के ऊपर प्रवचन दिए जो आज श्लोक हमने लिया। 1960s में श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में प्रवचन दे रहे हैं इसी श्लोक के ऊपर। प्रभुपाद ने एग्जाम्पल लिया कठपुतली का, पपेट शो का, कि जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी देखा कि जो तीन देवियां सुंदर दिखती हुई लेकिन उनके हाथ में क्या है, वो कठपुतली कार की जो रस्सी होती है और वो बंधी हुई सब जीवों से, तो मनुष्य दिखाए हैं तो सब जीवों से वो रस्सी बंधी हुई। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि इस भौतिक संसार में ये जो पूरा प्रपंच चल रहा है, पूरा संसार जो चल रहा है, ये एक कठपुतली का खेल है। सुना होगा, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है, कब कौन कहां कैसे वो डोर कट जाए किसे पता है ना, हरे कृष्ण। तो सही बात है, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां। तो यहां अब ये स्लाइड में रस्सियां बहुत अच्छी सी दिख रही हैं, इसलिए हमको लगे कैसे बंधे हुए बेचारे है ना। अच्छा, आप में से कितनों ने कठपुतली का खेल देखा, पपेट शो? हम खुद कैरेक्टर हैं भाई, देखा क्या हमारा चल रहा है खेल। तो उसमें देखो वो लोग जो वो धागा इस्तेमाल करते हैं वो इतना महीन इतना पतला होता है कि वो दिखता नहीं, केवल दिखता है कि वो हाथ हिल रहा है ये वो। तो ऐसा क्या ऐसे लगता है कि अभी बच्चों को तो समझ में नहीं आता, उनको तो लगता है कि सच में उनका कैसे अपने आप हाथ हिल रहा है, लेकिन जो वयस्क हैं वो जानते हैं, फिर भी मजा लेते हैं, वो जानते हैं कि कोई ऊपर से हिला रहा है। तो प्रभुपाद अपने प्रवचन में वो एक कठपुतली का उदाहरण लिए कि यहां पर हैं एक तो जो कठपुतली है वो, और फिर जिस धागे से उस कठपुतली को बांधा गया है, और फिर तीसरी पार्टी कौन है, कठपुतली कार। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ऊपर जो कठपुतली कार है, पपिटियर जिसको बोलेंगे, दर्शक नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे पास दर्शक कौन है, हम सभी कठपुतली हैं। तो एक कठपुतली अगर दूसरी कठपुतली को देख रही है तो दर्शक नहीं कहलाएगी वो। तो प्रभुपाद ने क्वेश्चन पूछा उस प्रवचन में, हु इज द डूअर। अब यदि अभी यहां पर एक स्लाइड मुझे मिला, जिस फोटो मिला जिसके अंदर अलग अलग कर रहे हैं, कोई कोई कुछ बजा रहा है, कोई तानपुरा बजा रहा है, कुछ क्या बजा रहा है, तो अब अलग अलग तरीके से उनके हाथ हिल रहे हैं। तो कोई ये कहे क्वेश्चन का ये आंसर इस प्रकार से यदि दे, हु इज द डूअर, करता कौन है अब इसमें, कि हाथ वो कारण है उस कर्म का, हाथ पैर जो भी अंग शरीर के वो कारण है कर्म के, या जो धागा है वो कारण है, या वो धागा जो कि बंधा हुआ है और वो जो कठपुतली कार उस धागे को हिला रहा है, जैसे यहां पे अब इस इमेज में आप देख रहे हैं। तो प्रश्न है, हु, प्रभुपाद ने पूछा, हु इज द डूअर, चलिए, हु इज द डूअर? पपिटियर इज द डूअर। तो ठीक है, अगर हम ये सब लोग एग्री है इससे, कठपुतली कार करता है। अच्छा ठीक है, पहले इसको लेते हैं। तो मान लो कि कठपुतली कार, वो उसने धागा वागा नीचे, कठपुतली नहीं है, कठपुतली कार है, धागा है लेकिन कठपुतली नहीं है। एक और इंस्टेंस ये हो सकता है कि कठपुतली कार है और कठपुतली भी है लेकिन धागा नहीं। फिर नाउ हु इज द डूअर? कंफ्यूज हो गए आप लोग को लग रहा, कभी इतना सोचा नहीं कठपुतली की देखते समय। अच्छा यहां पर तो ये जो उदाहरण है इसके अंदर प्रभुपाद ने कहा कि उस कठपुतली कार के ऊपर भी एक है, मैं अधक्षेण प्रकृति। भगवान कहते हैं कि ये तीन गुण, प्रकृति के तीन गुण तो हमको नचा रहे हैं, तो उनके अधिष्ठात्रा देवियां हैं, वो जो हमने स्लाइड में देखा, सत्व गुण की एक देवी है, तमोगुण की, रजोगुण की, और उनके ऊपर, मतलब वो प्रकृति है, और उनके ऊपर भगवान। तो भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति ये तीन गुणों को लेकर, मतलब गुण क्या हो गए, वो रस्सी या धागा और हम लोग वो कठपुतली, तो चार पार्टी हो गए अभी इसमें। तो है कोई उत्तर प्रभुपाद का ये प्रश्न, कोई उत्तर? हु इज द डूअर नाउ? ये अक्सर हमारे जो सिक्स सेशन गीता कोर्स में ये प्रश्न पूछा जाता है, और कई लोगों का ये मानना है कि भाई यदि कठपुतली कार ही सब कुछ करा रहा है तो फिर मैं तो बस जो वो कराएगा बस उसके अधीन में रहूंगा, तो मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? Why should I do anything then if everything is preordained and there is someone above me who is making me do? तो इसका उत्तर प्रभुपाद ने इस प्रकार से दिया कि हाँ, भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण के नीचे प्रकृति उनकी अध्यक्षता में चल रही है, प्रकृति तीन गुणों को लेकर हमें बांधी हुई है और हम जो बंधे हुए हैं कर्म कर रहे हैं, लेकिन इसमें कैच क्या है कि उन तीन गुणों को चुना हमने। किसने चुना? हमने चुना, तो हमने उसका चयन किया, बिकॉज वी चोज, देयरफॉर देन ऑल ऑफ दिस यू नो द थ्री मोड्स एंड द कॉम्बिनेशन एंड प्रकृति मटीरियल वर्ल्ड एलिमेंट्स ये सब कुछ बना। जैसे प्रभुपाद को जब एक बार पूछा गया कि ये संसार बनाया क्यों भगवान ने, प्रभुपाद ने कहा भगवान ने नहीं, आपने बनाया। तो उदाहरण दिया कि जेल कौन बनाता है? कैदी बनाते हैं। वो जेल कितना सख्त होना चाहिए कैदियों के ऊपर डिपेंड करता है कि कैदी कितने खूंखार है, उसके अनुसार जेल बनता है कि नहीं। जैसे पाश्चात्य देश में ऐसे से वो है ना, किसी सरोवर या समुद्र के बीच में एक द्वीप पे बनाया हुआ है कोई, अल्कट्रास करके एक बहुत बड़ा जेल था, तो वो जेल का निर्माण किसको ध्यान में रखते हुए ऐसा किया? तिहाड़ जेल किसको ध्यान में रखते हुए ऐसा सख्त जेल बनाया? कैदियों को ध्यान में। तो प्रभुपाद ने बोला कृष्णा डिड में यू मेड इट, यू मेड हिम मेक इट, उस प्रकार से। तो अब अगर जैसे कि मैं अभी इस वर्ष जब लंदन से आया तो मैंने बॉम्बे एयरपोर्ट पर देखा, जैसे ही आप लोग जानते हैं प्लेन लैंड होती है और फिर सारे पैसेंजर्स बाहर आते हैं अपना अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए, तो एयरपोर्ट पर लगेज वो जो है ना कन्वेयर बेल्ट पर आता है, तो कन्वेयर बेल्ट पर आता है, आपको आपका लगेज देखना है और फिर उठा लेना। तो मैंने देखा एक व्यक्ति, उसका आया लगेज, पहले उसको ध्यान में नहीं आया कि उसका ही है, फिर वो घूम के सेकेंड टाइम आया तब समझ गया कि उसका ही है। तो उसने उठाया तो उसे इतना भारी लगा, भाई क्या भर रखा, इतना भारी कैसे। तो मुझे हंसी आई, तुम्हारा लगेज है, तुमने ही पैक किया, इतना भारी कैसे पूछ रहे हो, है ना। तो वैसे ही इस संसार में जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम ही उस प्रकार के वो पैसेंजर की तरह है, हम खुद ही डाले हैं वो सब कचरा अंदर और फिर बोलते हैं इतना भारी कैसे हो गया। जैसे कई लोग बोलते मैं इतना मोटा कैसे हो गया, अरे सो यू हैव पैक्ड योर ओन बैग्स and when the time came to lift your bags, you are complaining why the bag is so heavy. It's ridiculous. तो वैसे ही करता कौन है, हमने चयन किया कि हम भगवान को छोड़कर इस भौतिक संसार में हमें ये तीन गुणों को अनुभव करना है। तब होता क्या है कि जैसे कि एक जेल होता है, जेल जो होता है वो कैदी, उन्होंने उनको वो जानते हैं कि मैं जो चोरी कर रहा हूं, मैं जो कुकर्म कर रहा हूं, उसके वजह से मुझे जेल जाना पड़ेगा। और वो ये भी जानते हैं कि जेल में क्या होगा। और उधर जाने के बाद कई ऐसी चीजें वहां पर जेल में उसको अनुभव करने मिलती है कि जिसका ज्ञान उसको नहीं था। मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऊपरी ज्ञान था लेकिन आंतरिक ज्ञान नहीं था। तो वैसे इस भौतिक संसार में ये गुण कैसे कार्य करते हैं, फिर हम जब आने के पश्चात हमें समझ में आता है, फिर वो जो चार डिफरेंट लेवल्स हैं, धर्म, अर्थ, काम, फिर मोक्ष, तो इन सब को भुगतने के बाद फिर बाद में उसके दिमाग में आता है मैंने बहुत बड़ी गलती की, चलो बैग खाली करो, फिर मोक्ष। तो अब प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कठपुतली का, हु इज द डूअर। और इसी अध्याय का ये श्लोक जो आगे चलकर हम लेंगे, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। The spirit soul bewildered by the influence of false ego thinks himself the doer of the activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. तो कोई प्रश्न ये पूछ सकता है कि इसमें तो कहा गया है कि तीन गुण हैं और मैं यदि ये सोचूं कि मैं करता हूं तो मैं विमूढ़ आत्मा हूं। तो यहां पर प्रभुपाद इसको इस प्रकार से समझा रहे हैं कि जैसे कोई जेल में है, तो जेल में कोई कैदी है, उसको अब देखिए कहीं पर भी जाना है तो कौन लेके जाएगा, सरकार लेके जाएगी ना। जैसे एक कैदी वो दूसरे कैदी से कहता है कि देखो अरे मेरे ठाट देखो, मेरे को जब कोर्ट में ले जाते हैं तो इतनी लंबी गाड़ी में ले जाते हैं और पांच पांच आर्म्ड गनमैन मेरे को लेके जाते हैं। और वो जो मैजिस्ट्रेट आता है वो अपनी छोटी सी गाड़ी में आता है, कोई एस्कॉर्ट भी नहीं होता, तो बड़ा कौन हुआ, ज्यादा सिक्योरिटी किसको दी जा रही है, मेरे को दी जा रही है। इसको कहते हैं विमूढ़ आत्मा। तो ये श्लोक में जो भगवान बोल रहे हैं विमूढ़ आत्मा, वो इसको बोलते हैं कि वो सोच रहा है कि उसमें अंदर कोई गुण है, वो कोई बहुत बढ़ चढ़कर है जिसकी वजह से कुछ हो रहा है। हाँ उसको कहीं पर भी जाना है तो सरकार की गाड़ी उसको लेके जाएगी, लेकिन क्यों लेके जाएगी, ताकि उसको वापस लाके दंडित करे, फरार ना हो जाए। तो अल्टीमेटली फिर वो सब कहाँ बॉइल डाउन होता है, उसी के ऊपर, उसी का चॉइस, उसी की स्वेच्छा, फ्री विल, उसी के ऊपर, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत। तो हमने कई बार ये अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तीनों गुणों के ये देखे हैं, तो संक्षिप्त रूप में देख लेंगे। तो सत्व गुण के लक्षण हैं प्यूरिटी, नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम सिंस। तो भगवान यहां पर ये कह रहे हैं कि अर्जुन तुम ये जो दिखा रहे हो ना बड़प्पन, क्या बड़प्पन दिखा रहे हो कि अरे माफ कर रहा हूं मैं इनको, किसको, दुर्योधन को, दुशासन को, इन सबको मैं माफ कर रहा हूं, ये जो तुम बड़प्पन दिखा रहे हो ये भी गुणों के अधीन है, ये सत्व गुण के अधीन है, ये जो नोबिलिटी, काइंडनेस, बीइंग चैरिटेबल, ये सब सत्व गुण के अधीन है, लेकिन फिर भी बंधे हुए हो तुम। फिर रजोगुण जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहां बताए गए, फ्रूटिव एक्टिविटीज, हर समय उसी विचार में रहना कि मुझे क्या फायदा मिलेगा कुछ भी करने से। तो अक्सर कलयुग के जो जीव हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं कि कहां पर फायदा मिलेगा, तो जहां पर फायदा मिले बस वहां पर पहुंच जाओ, चाहे वो भगवान हो चाहे वो कोई नास्तिक हो, मेरा फायदा होना चाहिए। इसलिए ये कहा गया है कि हमारे जो शास्त्र हैं वो श्लोक हम लेंगे, त्रैगुण्य विषया विदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में, ये श्लोक हम दूसरे अध्याय का है, त्रैगुण्य विषया वेदा, कि वेद में भी ये तीन गुणों से संबंधित बहुत कुछ कहा गया है। 96% ये अलग अलग प्रकार की विधियां बताई गई है इन गुणों के अधीन, खाली 4% है प्योर डिवोशनल सर्विस पूरे वेद में, पूरे वैदिक वांग्मय में, क्योंकि लोग जो हैं वो इतना आसक्त हैं। तो फिर व्यासदेव जी ने सोचा कि लोग जब इतना आसक्त हैं कुछ पाने के, कुछ भौतिक चीज पाने के, तो क्यों ना वो वैदिक पाठशाला से पाए उसको। इवन इफ दे वॉन्ट, इफ दे डिजायरस ऑफ समथिंग मटीरियल, एटलीस्ट लेट देम नॉक द डोर ऑफ द वैदिक स्कूल। तो इसलिए ये सब कुछ उसके अंदर दिया गया है। तो ठीक है, आपको अगर पैसा चाहिए तो कोई देवता भगवान ने अपॉइंट किया है, तो फिर देवता के बारे में और ज्यादा सुनेंगे, हाँ पैसे के लिए उस देवता के पास जाएंगे, फिर देवता के बारे में और जानेंगे, और अंततः क्या जानेंगे, अरे ये इनके भी ऊपर कोई बॉस है। सो लाइक दैट दे विल बी इंड्यूस्ड टू कम टू प्योर डिवोशन सर्विस। तो ये सारे अनलिमिटेड डिजायर्स, ऑब्सेस्ड विद लस्ट, ये सारी चीजें ये रजोगुण का लक्षण। और फिर तमोगुण का ये लक्षण है कि आलस्य, मादक द्रव्यों का सेवन और एक प्रकार का पागलपन, जो कि आजकल ये जो दोनों में जीव दिखते हैं विशेष रूप से मनुष्य, किसमें, रजोगुण और तमोगुण में। तो फिर दिन भर रजोगुण और फिर जैसे ही शाम होती है फिर तमोगुण, और सत्वगुण का समय आता है, सत्वगुण तो आता ही नहीं है। जैसे एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी रीटा हेवर्ड्स करके, बहुत फेमस थी वो, इतनी फेमस थी कि उन्होंने एक अपना एल्बम निकाला जो कि जिसको बोलते हैं ना हॉट केक्स, वो सोल्ड लाइक हॉट केक्स। वो एल्बम क्या था, उनके हार्ट बीट का साउंड था बस। सोचो आप सीडी प्लेयर में लगाओगे धक 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 धक, मिलियंस ऑफ कॉपीज उसका, क्योंकि उसका था, उसका हार्ट बीट। अभी पता नहीं कितने ब्लॉकेज होंगे उसके अंदर, वो भी मालूम नहीं, लेकिन क्योंकि इतनी फेमस अभिनेत्री, उसके हार्ट बीट का वो म्यूजिक एल्बम निकाला, पता है म्यूजिक बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं उसको, तो उसको एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप जब आप इतने सुंदर हो, सुबह सुबह आप जब उठते हो, अपने आप को आईने में देखते हो, तो क्या महसूस करते हो? तो उसका उत्तर ये था, सबसे पहले सुबह उठना पड़ेगा मेरे को उसके लिए, क्योंकि 12 बजे के बाद तो उठती थी। तो आजकल ये जो सत्वगुण है, सत्वगुण मैं आपको बता रहा था कि कई बार भारत में लोग सत्वगुण के समय, जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस समय उठते भी हैं आजकल रामदेव बाबा के शिविर में जाने के लिए। मुझे हाल ही में बताया गया है कि कई ऐसे ऐसे ये योगिक शिविर हैं जो कि सुबह यहाँ नासिक में सुबह 4 बजे शुरू हुए और हजारों की संख्या में लोग। तो आप ये मत समझिए कि वो सत्वगुण में स्थित हैं, क्योंकि विशेष रूप से जाग किस ले रहे हैं? ताकि एक शेपली बॉडी मिले, हाँ, फिर पार्टियों में मॉडल अच्छा दिखूं मैं। तो मेंटालिटी क्या है? वही रजोगुण की मेंटालिटी, फ्रूटिव, कि मुझे इसमें भौतिक क्या मिलेगा। एज सून एज यू हैव अ मंडेन फ्रूटिव इंटेंशन, इट बिकम्स रजोगुण। चाहे आप 4 बजे उठ के वो करें, चाहे रात को 10 बजे। तो इसलिए विशेष रूप से रजस तमस भाव के श्रीमद् भागवत में कलयुग का लक्षण बताया गया। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसलिए पिछले अध्याय में हमने श्लोक लिया था, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्ममान। तो ये जो श्लोक और आज का श्लोक, क्योंकि आज के श्लोक में भी भगवान क्या कहे हैं, कार्यते यवश्य कर्म सर्व प्रकृतिर जैर्गुण, कि गुणों के वजह से कर्मों में लगे हुए। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन निस्त्रैगुण्यो, तुम इन गुणों के ऊपर उठो, तीनों गुणों के ऊपर उठो। ये नहीं कि तुम सत्वगुण में स्थित हो तो तुम आध्यात्मिक हो गए, नहीं, उनके भी ऊपर उठो। इसलिए कहते हैं कि निर्योग क्षेम आत्मवान। ये दो, ये जो लास्ट के दो वर्ड्स हैं लास्ट लाइन के, निर्योग क्षेम आत्मवान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन तुम योग क्षेम की चिंता मत करो। इसलिए कहते निर्योग क्षेम। तो योग क्षेम का अर्थ भगवान क्या दे रहे हैं अर्जुन को इस श्लोक में, कि योग का अर्थ भगवान कह रहे हैं नहीं प्राप्त वस्तु की चिंता, और क्षेम का अर्थ है प्राप्त वस्तु की रक्षा की चिंता। हाँ, अक्सर यही दो चिंताएं होती है ना, क्या मुझे नहीं मिला और क्या मिला है वो खो न जाए। तो भगवान उस दूसरे अध्याय के श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं निर्योग क्षेम, इसके ऊपर उठना है तुमको, और ऊपर उठ के तुमको बनना क्या है, आत्मवान बनो। तो आत्मवान का अर्थ हमारे आचार्य बताए हैं कि भगवान श्री कृष्ण को धारण करने वाला, वान का अर्थ है धारण करने वाला, आत्मा का अनुवाद किया गया है भगवान, तो भगवान को धारण करने वाला हुआ आत्मवान। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अरे भाई तुमने मुझे धारण किया है इस रथ पर, ये क्या है, तुमने मुझे रथ पर धारण किया है, अब तुम अपने मनोरथ पर धारण करो, मुझे अपने मन के रथ पर मुझे धारण करो और आत्मवान बनो। इसलिए ये जो श्लोक हमने लिया दूसरे अध्याय का, निर्योग क्षेम आत्मवान, ये दोनों का अब अर्थ क्या हुआ, कि जो अर्जुन केवल अपनी चिंता में थे वो क्या था, निर्योग क्षेम, और आत्मवान यदि बनेंगे तो फिर वो भगवान श्री कृष्ण की चिंता, और भगवान श्री कृष्ण की क्या चिंता, धर्म का स्थापना कैसे हो। तो इसलिए भगवान ने जब अर्जुन को कहा कि तीनों गुणों से ऊपर उठो, ऊपर उठकर करना क्या है, चटाई डालकर सोना नहीं है, ऊपर उठकर आत्मवान बनना है। आत्मवान का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण के मिशन में भागीदार हो। थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि इसका कनेक्शन वो दूसरे अध्याय के श्लोक से है, इसलिए तो आज के श्लोक में भी जो भगवान तीन गुणों के परे जाने के लिए बोल रहे हैं या तीन गुणों के वशीभूत जो लोग हर क्षण कर्म में लगे हुए, उसका क्या अर्थ है? तो कार्यते यवश कर्म। तो भगवान ये कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, या तो तुम तीन गुणों के अधीन कर्म करोगे या मुझसे प्रेम करके कर्म करोगे। Either the jiva will work for Mahamaya or will work for Yogamaya. बीच में कुछ नहीं है, ये प्रॉक्सी लगा के घर चले जाना नहीं होता है जीव के लिए। Either Mahamaya और Yogamaya। तो यहां पर भगवान ये बता रहे हैं कि प्रकृति के तीन गुणों के अधीन भौतिक संसार में हर क्षण जीव लगा हुआ है और कृष्ण प्रेम के अधीन भी हर क्षण आध्यात्मिक संसार में जीव लगे हुए हैं। तो फिर कोई कहेगा, अरे भाई हम में और उनमें अंतर क्या है? वो भी हर क्षण लगे हुए हैं भगवान की सेवा में, हम भी हर क्षण लगे हुए हैं भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में। सो व्हाट इज द डिफरेंस? तो इसलिए उसके लिए हमको ये समझना होगा कि सत्वगुण और विशुद्ध सत्व में अंतर क्या है। तो तीन गुणों के विषय में तो हमने देख लिया, तो सबसे ऊंचा गुण कौन सा है तीनों में? सत्वगुण सबसे ऊंचा है। आप लोग सत्वगुण में इसलिए बोल रहे हैं, आप लोग जो तमोगुण में होते हैं उनको अगर पूछो वो बोले पागल हैं आप लोग, सबसे ज्यादा मजा तो रात के 10 बजे के बाद आता है जब बॉटलें खुलती हैं। तो सत्वगुण सबसे ऊंचा, लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं कि विशुद्ध सत्व वसुदेव शब्दितम कहा गया है। तो ये विशुद्ध सत्व क्या है? ये फोर्थ कैटेगरी कौन सा है? सत्वगुण के भी ऊपर है। तो ये दोनों में अंतर भगवान बता रहे हैं कि केवल अगर हम दोनों शब्दों को लें तो क्या डिफरेंस शब्दों में आ रहा है? यहां पर गुण शब्द इस्तेमाल किया गया है और वहां पर गुण को निकालकर विशुद्ध, वहां पर गुण शब्द नहीं है, वहां पर केवल विशुद्ध सत्व है। यहां पर सत्व गुण है, विशुद्ध नहीं है। तो इसे यदि हम ग्रामेटिकल तरीके से समझें तो गुण का अर्थ होता है बंधन और विशुद्ध का अर्थ होता है आध्यात्मिक। तो यदि कोई सत्व गुण में भी स्थित हो लेकिन गुण शब्द आ रहा है तो बंधन है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि एक कैदी सोने की जंजीरों से जकड़ा गया है, एक चांदी की और एक लोहे की। तो जो सोने की जंजीरों से जकड़ा हुआ है वो तीसरे व्यक्ति को देख के बोलता है, तेरे तो लोहे की है, मेरा 22 कैरेट या 24 कैरेट का है हथकड़ी मेरी। अरे चाहे 24 कैरेट की हो या लोहे की हो, दोनों बंधे हुए हैं। तो गुण ये शब्द आ गया मतलब बंधन, और विशुद्ध सत्व में गुण निकाल दिया, विशुद्ध लगा दिया, विशुद्ध का अर्थ है वो आध्यात्मिक बन गया। तो भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम ये मत समझो कि तुम जो सत्व गुणों की बातें कर रहे हो तो तुम बंधन से मुक्त हो गए। नहीं, तुम्हारा बंधन अभी भी है। तो इसलिए ये अंतर है कि जो बिना किसी क्षण अव्यर्थ कालत्वम जिसे कहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं, एक मोमेंट भी बिना वेस्ट किए भगवान की सेवा में जो लगा है, और एक इस भौतिक संसार में भी एक क्षण बिना वेस्ट किए किसमें लगा है? रजोगुण और तमोगुण को संतुष्ट करने में लगा। तो अभी हम अ शॉर्ट ग्लिम्स इनटू द मंडेन वर्ल्ड ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस देखेंगे, क्योंकि यहां पर अभी भगवान कह रहे हैं कि दो हैं, एक है जो महामाया के अधीन है और एक है जो योग माया के अधीन है। तो हुआ क्या कि पिछले साल हम लोग यहाँ पर ब्रह्मचारी क्लासेस लेते हैं, तो एक प्रश्न ऐसा पूछा गया, ब्रह्मचारी ने पूछा कि हमको हमारी सेवा में कई बार रुचि नहीं आती, आई डोंट लाइक माई सर्विस, सो वॉट टू डू। तो फिर मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए, रिसर्च किया उनको दिखाने के लिए। इफ यू डोंट लाइक योर सेवा इन द ब्रह्मचारी आश्रम, देन जस्ट बी ग्लैड दैट यू आर नॉट एन इलेक्ट्रिशियन इन चाइना। मतलब ऑप्शन क्या है भगवान की सेवा के अलावा, बाहर आजकल ऑप्शंस क्या हैं माया की सेवा करने के लिए? कोई हिम्मत करेगा? सो इफ यू आर नॉट लाइकिंग योर सेवा फॉर कृष्णा, देन बी ग्लैड दैट एटलीस्ट यू आर नॉट एन इलेक्ट्रिशियन इन चाइना लाइक दिस। फर्दर, और अ प्लम्बर इन हंगरी, इंडिया को तो लिए नहीं मैंने एग्जाम्पल। कि कोई अगर पैसे कमाने के लिए, लोग क्या क्या किन किन गुणों, अभी शायद वो तमोगुण से भी नीचे जा रहे होंगे। सो बी ग्लैड दैट एटलीस्ट वी डोंट हैव टू डू ऑल दिस। अ डिलीवरी सर्विस एम्प्लॉय इन एशिया, इनको सोचिए ये सब तामझाम ऊपर डाल डूल के डिलीवर करना पड़ता है। सोचो कि क्या इमेज रहेगा, ऐसा ऐसा पोशाक पहन के घूमना है रोज आपको उसके ऊपर। हाँ, अच्छा ये सबसे डेंजर है, डिओड्रेंट जानते हैं ना आप, तो ऐसी ऐसी कंपनियां जहां पे डिओड्रेंट टेस्टिंग होता है। बहुत पैसे मिलते हैं इनको। सो बी ग्लैड दैट वी हैव गॉट द सर्विस ऑफ राधा मदन गोपाल। अ जू कीपर इन अमेरिका, a ditch digger in Poland। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आजकल वो जो रजोगुण और तमोगुण है उसमें स्थित कार्य क्या चल रहे हैं, आज आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं ना, कार्यते यवश, इनको विवश होकर ये सब करना पड़ रहा है। तो सोचिए जीव आध्यात्मिक संसार को छोड़कर विवश होके क्या क्या अपने रजोगुण तमोगुण को संतुष्ट करने के लिए राजी हो जाता है। अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन यूएसए, जैसे एक ये सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सॉफ्टवेयर कंपनी का एक टॉयलेट था, तो टॉयलेट के अंदर दरवाजे पे लिखा हुआ था, जैसे कोई अंदर जाएगा दरवाजा बंद करेगा तो दरवाजे पे लिखा हुआ था, अरे इतना जोर अगर प्रोजेक्ट पे लगा था तो प्रमोशन मिल जाता। तो ये हालत है, डेडलाइंस, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। सो जस्ट बी ग्लैड दैट नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर देयर। And what really is this kind of job, a mobile toilet in Indonesia. तो इसलिए फिर हमने स्लाइड में दिखाया, जस्ट बी थैंकफुल दैट यू आर अ ब्रह्मचारी एंड हरी बैक टू योर सेवा. और उसके बाद में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं था ये हमारी क्लास के बाद. तो आजकल ये हालत है, हमने वो पहली स्लाइड देखी, बॉम्बे में खाली आपको आपके अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है लेकिन लोकल ट्रेन में बैठकर उधर पहुंचने तक पता नहीं आप जिंदा पहुंचेंगे कि नहीं काम करने के लिए. तो ये हालत आजकल हो रही. तो ये सब जो भगवान बता रहे हैं कि हर एक क्षण किसके वशीभूत होकर बद्ध जीव ऐसे ऐसे घोर कर्मों में लगा है, ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं इसके वशीभूत होकर. तो सोचिए कि इसके वशीभूत होकर अगर उसे इतना, ये कह सकते हैं कि इतना उसको एंथुजियाज्म मिल रहा है, अगर वो वर्ड यूज किया जाए. तो प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया अपने एक मॉर्निंग वॉक में कि मटेरियलिस्टिक कर्मा एंड कृष्ण सेवा इज लाइक द एक्ट ऑफ ईटिंग. बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिया. कैसे एक्ट ऑफ ईटिंग? तो पूछा गया है, प्रभुपाद ने पूछा इस मॉर्निंग वॉक कॉन्वर्सेशन में, व्हाट इज द इम्पेटस फॉर ईटिंग? रोज हम खाते हैं तो उसके पीछे क्या प्रेरणा है, खाने के पीछे क्या प्रेरणा है हम? यस, दो चीजें, एक है हंगर और एक है टेस्ट. कि रोज भूख लगती है और फिर हमारे ये जीभ पर जो टेस्ट बड्स हैं वो एक इम्पेट, कई बार भूख नहीं है फिर भी ये एक इम्पेटस बना रहता है. और कई बार यहां पे भूख इतनी है कि इसकी कोई परवाह ही नहीं करता, चलो लाओ जो भी है ना. तो ये जो दो प्रेरणा के स्रोत हैं खाने के लिए, प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिए. तो जो भौतिक कर्मों में लगे हुए हैं वो ऐसे कर्मों में क्यों बार 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 बार, क्योंकि उनकी भूख कम नहीं हो रही है. देखिए, मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कितना भी खाए उसकी भूख ही नहीं कम होती, तो दिन भर क्या करेगा? वो खाता रहेगा, खाता रहेगा. पाश्चात्य देश में बहुत लोग करते हैं, उनको इतने सारे एक साथ आइटम्स खाने होते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, कई ऐसे होते हैं ग्लटन्स जिनको बोलते हैं, वो खा के फिर उंगली डालकर उल्टी करते हैं क्योंकि पेट का कैपेसिटी तो लिमिटेड है, फिर उल्टी कर देंगे, फिर दूसरा कुछ खाएंगे, फिर उसको भी उल्टी कर देंगे, फिर और कुछ खाएंगे. मतलब सुअर भी नहीं करते कई बार ऐसे. तो पॉइंट यहां पर श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि यदि ये दो चीजें हंगर और टेस्ट अनलिमिटेड हो जाए किसी का, तो सोचो दिन भर क्या करेगा? वो खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा. अनलिमिटेड टेस्ट, क्योंकि टेस्ट भी, ये जो हमारे जीवा के ऊपर टेस्ट बर्ड्स हैं, बहुत सारे, इतनी सी जीवा के ऊपर बहुत टेस्ट बर्ड्स हैं, अलग अलग प्रकार के टेस्ट हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. लेकिन जब किसी को वो पीलिया का रोग हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, तो सारा टेस्ट बस खत्म, फिर कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है ना. लेकिन कल्पना कीजिए कि ये टेस्ट बर्ड्स अनलिमिटेड एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं और भूख भी अनलिमिटेड. तो फिर प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया कि एक क्षण भी वो बिना खाए नहीं रह पाएगा. तो अब इसका पॉजिटिव एग्जाम्पल प्रभुपाद क्या दे रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है क्या? अनलिमिटेड हंगर टू सर्व कृष्णा एंड अनलिमिटेड टेस्ट इन कृष्ण प्रेम. तो इसलिए वहां पर एक क्षण भी नहीं जाता कि वो लोग भगवान की सेवा में नहीं लगे, है कि नहीं? तो ये प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया. और फिर प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया दामोदर लीला का, कि कैसे दामोदर लीला में भगवान जो कि त्रिगुणातीत हैं, ये तीनों गुणों के, सत्वगुण रजोगुण के भी अतीत परे भगवान जो हैं दामोदर, उनको माता यशोदा ने गुण से बांध दिया, गुण मतलब रस्सी भी होता है, तो जो तीन गुणों के परे हैं उनको गुण से बांधना मतलब ये केवल कोई व्यक्ति शुद्ध कृष्ण प्रेम में, जिसकी कृष्ण सेवा और कृष्ण कीर्तन आस्वादन की जो भूख है वो अनलिमिटेड है, असीमित है, ओनली दैट सोल कैन बी कॉन्स्टेंटली एंगेज इन कृष्णा सर्विस हुज हंगर एंड टेस्ट फॉर कृष्णा इज अनलिमिटेड। तो हमारी स्थिति क्या है अब साधकों की, क्योंकि हमारा कृष्ण के प्रति भूख है लेकिन बहुत लिमिटेड है, एकदम प्राइवेट लिमिटेड। और टेस्ट अलग अलग, बहुत वैरायटी है उसका, तो टेस्ट है कभी नहीं कभी। तो इसलिए हमको जैसे हम लोग ये जो इतना दो दिन इतना कीर्तन रखे थे तो हम लोग मजा ले रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था, फिर बाद में वो वही ट्यून चल रही है, कई घंटों तक ट्यून चल रही है, तो फिर धीरे धीरे मन बोलता है तो ट्यून चेंज करो ना कुछ, थोड़ा भी रुको, उनको फ्लूट को बजाने दो अभी, इसको करने दो उसको करने दो, अभी आपका बहुत हो गया, अभी आप बहुत देर से गा रहे हैं, उनको बजाने दो अभी थोड़ा, उसको सुनने दो, क्योंकि हमारा क्या है वो कि हमारा टेस्ट नहीं है, हमारा टेस्ट बहुत ही लो लेवल पर है, न तो कृष्ण के प्रति वैसी भूख है न वैसी टेस्ट है, इसलिए फिर हमको वो तीन गुणों को बार बार इंक्लूड करना पड़ता है, चलो फिर थोड़ा जाकर एक झपकी मार के आते हैं, तो कुछ खा के आते हैं, फिर कुछ करके आते हैं, फिर बाद में अच्छा वो अभी टेस्ट खत्म हो गया, थोड़ा इधर का थोड़ा टेस्ट लेते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक संसार में बोरियत नाम की चीज ही नहीं, वहां पर बोरियत नाम की चीज नहीं। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद हिप्पियों को बोल रहे थे कि आध्यात्मिक संसार में केवल कृष्ण कीर्तन, कृष्ण सेवा, कृष्ण कथा है, तो कई हिप्पी डर गए, और कुछ नहीं, डोनट्स नहीं, कॉफी नहीं, खाली कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा, कृष्ण कीर्तन, तो वो लोग डर गए, क्योंकि हम लोग किसके आदि हैं, हम लोग इसके बीच बीच में ये सब के आदि हैं। तो यहां पर जब भगवान कह रहे हैं कि वी आर यूज्ड टू नॉट रिमेनिंग आइडल इवन फॉर अ मोमेंट, है कि नहीं, दैट इज द नेचर ऑफ द सोल। तो मैं इसके विषय में सोच रहा था कि जैसे हम तीन जो गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके अधीन एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते, जो आज के श्लोक में भगवान ने कहा, उसी प्रकार से आध्यात्मिक संसार में सच्चित आनंद तीन चीजें हैं जिसके बलबूते पर हम हर क्षण भगवान की सेवा में लगे हैं, बिकॉज वी आर एटर्नल सत, बिकॉज वी आर फुल ऑफ नॉलेज अबाउट कृष्णा एंड फुल ऑफ आनंद। तो इस संसार में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इम्पेटस है हर क्षण हमको कार्य में लगाने के लिए, और आध्यात्मिक संसार में कौन से तीन इम्पेटस है, सच्चित आनंद हमको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए। और इसलिए अब भगवान इस श्लोक के पश्चात अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम मिथ्याचारी मत बनो, क्योंकि तुम्हारा आचरण उसी से सिद्ध होगा जिसके अंदर तुम अपने आप को मेरी सेवा में लगाओगे। तो आगे के श्लोक में भगवान बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम अपने अंदर के मिथ्याचारी को पहचानो और उसको बाहर निकालो। यू आर नॉट सपोज टू रन अवे फ्रॉम दिस बैटल फील्ड, यू आर सपोज टू फाइट एंड दैट्स व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड। तो जो तुम अंदर हो वो बाहर अपने कार्यों में लाओ। मिथ्याचारी कौन होता है कि बाहर कुछ अंदर कुछ, तो यही भगवान अभी बहुत स्ट्रांगली अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम मिथ्याचारी मत बनो, तुम एक क्षत्रिय का जो तुम्हारा धर्म है उसके निभाते हुए हर क्षण मेरी सेवा में अपने आप को संलग्न करते हुए निर्योग क्षेम से आत्मवान बनो, मेरी संतुष्टि के लिए कर्म करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की